তিনি পরে পরে এই বিষয়ে এসে বলবেন অন্তঃপ্রেক্ষা সাক্ষাৎ দর্শনের মহিমা বর্ণন করা হয়েছে, আমরা কোন স্থলে বর্ণন করবো, আজকে সংক্ষেপে আমরা বলব। হে দেব অর্থাৎ দিব্য রূপ, অপ্রাকৃত রূপ অথবা প্রজেশী যে ক্রীড়া তার মধ্যে নিমগ্ন সবসময় দামোদর ভক্ত বাৎসল্য বিশেষ, এই জন্য আপনি আমার উপরে কৃপা করুন, আর এই জন্য আপনি এই চোখের দ্বারাও আমাদের দর্শন দেন। অনন্ত আপনার কৃপা অনন্ত, আপনি যেরকম অনন্ত আপনার কৃপাও অনন্ত, আপনি সহজে করে দিতে পারেন। প্রভু অর্থাৎ হে অচিন্ত অনন্ত অদ্ভুত মহাশক্তি যুক্ত, যোগের প্রতিও আপনি কৃপা করতে পারেন, আপনার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। হে বিষ্ণু, হে ব্যাপক, হে বৃন্দাবনকে নিকুঞ্জ গহ্বর আদিতে প্রবেশ, এটাও চোখের দ্বারা দৃশ্য মনে দৃশ্য হওয়া, এটা যে শ্রম আপনার মধ্যে নাই। আরো বলছেন অথবা হে অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন, হে বিষ্ণু সদ্ব্যাপী তথাপি কাম, সদ্ব্যাপী বিষ্ণু আর তথাপি দামোদর মানে অল্পে রজু দ্বারা বন্ধন মধ্যে এসে যান, অজ কিন্তু যশোদানন্দন আপনার, আপনি এমন কিছু নাই যে আপনি সমর্থ নয়, এই প্রকারে আপনি আমার এই চক্ষু দ্বারাই আপনি কৃপা করে দর্শন দেন, আমি এই প্রার্থনা করি। ইতি শ্রী দামোদর অষ্টকে ষষ্ঠ শ্লোকে সনাতন গোস্বামী সিদ্ধার্থনি আহ্বান। এখন আপনারা সকাল সকাল বেলা এখনই একাদশী একাদশী দিনেতে বৃন্দাবনে পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা করে আপনারা বিকাল বেলা ফের আবার কথা দিয়ে
So by the effect of this prayer, now Satyavrat Muni has been praying for darshan of which Krishna, Yasoda Nandan Krishna, who is looking here and there out of fear of his mother. That Balupal childhood form of Krishna has been bound to the grinding mortar. That face which is covered slightly by blackish hair, the gopis, especially Radhika, are kissing again and again. But how can we see that form of Krishna? Only by Nama Sankirtan. Therefore, Namo Deva Damo Dharananta Vishnu. He begins to chant the names of the Lord. Hey Guru, O Lord. Hey, O Maheshwara. I'm in the ocean. Which ocean? I'm in the ocean of material birth and death. In the ocean of suffering and sorrows. I'm also feeling your separation, therefore I'm in the ocean of separation. Alas, I'm bereft of satsanga. How I can cross that ocean? Therefore being bereft of satsanga is also another ocean of suffering. Therefore satsanga is the only jivamrit, the only nectar for the jiva. But I am fallen. I am devoid of such satsanga. Hey Prabhu, please save me. Before Satyavrat Muni is only praying for darshan in the mind, but now he is praying for sakshat darshan, to see Krishna directly by the eyes. Therefore, having darshan of Krishna by the eyes is superior than simply seeing Krishna in the mind. But this can only be achieved by aparigrih darshan, transcendental vision, not by these material eyes. But such direct darshan of the Lord is very rarely achieved. And in Brihat Bhagavatamrita, there is a discussion between the seeing Pipalaya Rishi and Gokumar about the difference between seeing Krishna by mind and seeing by eyes. But because of shortage of time and having said many times before, we are crossing that point. The point is that seeing by eyes is superior. O Krishna, you are Bhakta Patsalya Samudra. You are an ocean of affection for your devotees. For you everything is possible, therefore please give me darshan directly. Hey Ananta, hey Krishna, you are unlimited, therefore your mercy is unlimited. O Achyuta, you are possessed of inconceivable potencies, therefore you can make the impossible possible, therefore give me darshan. You are Vishnu, Namo Deva Dhamo Nananta Vishnu. You are all pervading, yet, and you also reside in the kundas of Vrindavan. Hey Krishna, you are Vyapak, all present, omnipresent, but still you are bound by Mother Yasoda. And last, O Damodara, give me your darshan. This morning is Parikram of Vrindavan for Kansi.
Hare Krishna.
धारी राधा विनोद बिहारी जी की
परिक्रमा आज तक निर्विघ्न रूप में और अच्छी तरह से संपन्न हुई। आज एकादशी दिन था और यहाँ की परिक्रमा पंचकोशी परिक्रमा की संपन्न हुई। माधुर्य का दिन भक्ति के द्वारा हृदय रोग काम का विनाश होता है। कहते हैं श्री चक्रवर्ती ठाकुर, कर्म जो ज्ञान के साधक या अधिकारी काम का दोष होने से या दुराचारों के आ जाने से हर प्रकार के निंदित होते हैं और सर्वनाश को प्राप्त करते, उनका सर्वनाश होता है। यदि काम रहे, दुराचार रहे, किंतु भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं होता। भक्ति मार्ग में काम आदि दोषों को रहते हुए भी मनुष्य भक्ति का अधिकारी होता है। भक्तों का आलम, भक्ति के अंगों का पालन करते ही उनके हृदय में परम स्वतंत्र भक्ति देवी आविर्भूत होती है और अत्यंत शीघ्र समस्त पापों को दूर करते हैं। ग्रंथकार महोदय शास्त्र के प्रमाण से इस तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। भक्ति के उदय में प्रथम अंग है श्रद्धा और पश्चात रति होती है। श्रद्धा या रति महत्पुरुषों के मुख से भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करने से हृदय में उदित होती है। कैसे होती है? वही मध्यम अधिकारी की कृपा से हृदय में भगवान लीला कथाओं को श्रवण करने से उदित होती है। भगवान की समस्त रसमयी लीलाओं का सार है रास, रास लीला। उस दिव्यतम रास लीला के वर्णन के बाद उसकी फलश्रुति श्रीमद् भागवत में बताया गया है, विक्रीडितम ब्रजपदुभि तत्कविष्णु सर्वान्वित अनुसूयात वर्णयेत यः भक्ति परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदयोगमार्तुम् अपिनोत्य अतिरिन्द्रिय। जैसा कि पहले कहा गया है, इस श्लोक का भावार्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण की ब्रज गोपियों के साथ रास लीला का निरंतर श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीर्तन करने से पराभक्ति प्राप्त होती है और शीघ्र हृदय रोग रहने पर भी श्रद्धा पूर्वक रास लीला का श्रवण और अनुकीर्तन किया जा सकता है। हृदय रोग रहे तब भी और उसे पराभक्ति की प्राप्ति होती है और शीघ्र ही पराभक्ति के प्रभाव से हृदय रोग जितने काम विकार हैं वो दूर हो जाए। इस श्लोक में भक्ति प्रता परां भगवती पति लभ्य, इसमें पराभक्ति लाभ कर ये असमापिका क्रिया है, समापिका नहीं कर। इसके बाद में काम हृदय रोग मासु अपिहिनो बताते हैं, हृदय रोग काम को शीघ्र ही परित्याग किया करता है। इस श्लोक में समापिका क्रिया के प्रयोग होने से काम के रहते हुए भी पराभक्ति या प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्ति के बाद तत्पश्चात परम स्वतंत्र प्रबला भक्ति के प्रभाव से हृदय रोग और अर्थात काम की नाश की बात जानी जाती है। इस श्लोक में वैष्णव तोषणी टीका में लिखा गया है, अत्र तु हृद्रोगा अपहना पूर्वमेव परम भक्ति प्राप्ति तस्मात् परम बलवत् एवं इदम साधन प्रीति भाव। साधना के द्वारा पहले हृदरोग या कामना पासना का नाश और तत्पश्चात साध्य वस्तु की प्राप्ति होती है, यही सब नियम है। पहले साधन हो और साधन के द्वारा तस्मात कामना पासना का नाश और तत्पश्चात साध्य वस्तु की प्राप्ति भी होती है। किंतु यहाँ पर हृदरोग काम के रहने पर भी श्रद्धा पूर्वक अनुश्रिया अथवा परणित जह वर्णन करे तो पराभक्ति पहले प्राप्त होती है। इसे राष्ट्रीय श्रवण कीर्तन आदि पराभक्ति प्राप्ति का विषय बलवान साधन। इसलिए श्रवण कीर्तन इत्यादि है और उसमें भी रासलीला का हो और श्रद्धा पूर्वक हो तो सब कामना वासना सब दूर हो जाए। यहाँ पराभक्ति से किसको समझते हैं? पराभक्ति क्या है? गोपी प्रेम जैसे सर्वोत्तम प्रेम लक्षण भक्ति को ही समझना चाहिए। फिर वो हृदय में काम के रहने की तो बात ही अलग रहे। अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी जो अनन्य रूप से भगवान का भजन करता है उसके भजन की और भक्ति पथ में कोई निंदा की बात किसी शास्त्र में नहीं सुना जाता। गीता में ऐसा कहा गया है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुदेव सम्मंतव्य सम्यक व्यवस्थो दिशा। अर्थात स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन जो अनन्य चित्त से मेरा भजन करते हैं वे यदि अत्यंत दुराचारी भी हो तूने साधु ही मानो, उनकी किसी प्रकार से निंदा मत करो, साधु समझो। क्योंकि उनका अध्यवसाय है, उनका भक्ति का जो साधन है अनन्य वो साधु ही। अनन्य किसको कहते हैं? जो भक्ति मुझको छोड़कर किसी भी देवता देवी का भजन नहीं करता वो अनन्य है। और मेरी भक्ति को छोड़कर ज्ञान कर्म योग इत्यादि का अनुष्ठान भी नहीं करता है, मेरी तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता है, ऐसा व्यक्ति यदि परहिंसा भी करता है, परदार गमन भी करता है, पर द्रव्य चोरी करके या लूटना ये भी करता है, ऐसा दुराचार परायण है तो उसको साधु या भक्त ही मानो। नहीं मानो तो भगवान की बात का आज्ञा का उल्लंघन करने से महापराध होगा। इस बात को यदि किंतु व्यक्ति अनन्य है, कहते भगवान का अनन्य भक्त हो करके उनको ऐसी संभावना नहीं है कि दुराचार में फंसे, नहीं। किंतु अभी जो कहा यदि कदाचित ऐसा देखा जाए, पाप भी करेंगे दुराचार भी करेंगे भजन भी करेंगे तब तो गया चौपट नवा अपराध हो गया, ऐसा नहीं। कदाचित किसी कारण से रामानुज संप्रदाय में कुछ इतिहासों में ऐसा देखा जाता है और भी देखा जाता है। तो ऐसा अनंत भजन परायण होने पर इन दुराचारों का रहना यद्यपि असंभव है फिर भी कदाचित यदि ऐसा देखा जाए तो उसे साधु मानो। इस श्लोक की सारार्थ दर्शनी टीका में कहते हैं कि भक्तों के प्रति भगवान की आसक्ति अत्यंत स्वाभाविक है, उनका दुराचार उनका परद्रव्य लुंठन हिंसा करने से जम इसका विचार नहीं करते। उसका विचार कौन करेगा? भगवान, क्योंकि उनके अपने जन है अनन्य तो हो गया है इसलिए भक्त यदि दुराचारी भी होता है तो फिर भी उसकी भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, भगवान उसे अत्यंत उत्तम कर देते हैं। इसी अभिप्राय को व्यक्त करने के लिए श्लोक की अवतारणा। ट्रांसलेशन,
राधिकाय जनाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय फलभक्ताय नमो नमः। So today is Ekadasi, and by the mercy of Sri Guru Gauranga, we completed our Panchakrosi, the circumambulation of Vrindavan Dham, and now continuing our Madhurja Karambini. Therefore, continuing on from the day before, the conclusion is that only by one-pointed devotion, then Rindro, the disease of the heart, or lust, can be destroyed completely. We discussed that the performers of karma or jnana, if there is some fault in their performance of sadhana or some fault in their character, then everything is lost. They lose the result of their sadhana also. But bhakti is not like this. Despite some fault in the performance or some fault in the devotee, then anyone can perform bhakti. Bhakti is supremely independent, therefore anyone who performs the angas of bhakti, then that independent bhakti may enter the heart of that devotee, and she herself will cleanse the heart of the devotee independently. There is so much evidence of this given in the Shastra, and Sri Vishwanatha Chakravarti Thakur now is giving that evidence. Then we have heard, by hearing Harikatha, one attains Shraddha, or faith. That develops into Rati, or Bhav Bhakti. How does it enter? By hearing Lila Katha from the Madhyamadikari. Especially of all Lila Katha, the essence of all Lila is Ras Lila. What is Ras Lila? Krishna's performance of pastimes with the gopis. This is called Ras. Therefore, in Srimad Bhagavatam, it is said, Vriklintu Brajabadu Me Thamchi Vishnu Sharadva Tat Anayushunaya Tat Vanayadva Bhaktim Param Bhagavati Patilupta Karma Ridro Achinati Iti Achineta Dhira. Therefore, it says here, Sukadeva Goswami describes one who continuously hears, that means performs Shravan of Krishna's pastimes with the gopis. And then, in accordance to what he has heard, performs kirtan of that same katha. Then, parabhakti, supreme devotion, enters the heart first by the performance of shravan and kirtan. Therefore, even though some lust may remain, that parabhakti will enter because she is independent, and then by the influence of that parabhakti, all anattas, especially lust, are completely dissipated. Therefore, it is not a fact that first we should become free from lust and then parabhakti is attained, because bhakti is independent. Therefore, she may enter despite the presence of lust. In Vaishnava Toshnitika, Sri Vishwanatha Chakravarti Thakur has said, generally, the sequence of attainment of bhakti is first sadhana, bhakti, the achievement of shraddha, then performing sadhana, the anattas will be dissipated, then one achieves Rati. But this Raslila is so powerful by performing Shravan and performing Kirtan according to what one has heard, Anukirtan. That Raslila Katha is so powerful. If one hears with faith, with complete faith, then that Parabhakti enters first and destroys all remaining anattas. That is the super excellence of hearing these pastimes. Therefore, what is parabhakti? Parabhakti means nothing else except the most elevated gopi prem. Therefore, in Bhagavad Gita, Krishna says, even if the most fallen person who is addicted to all types of bad habits, if he is ananya bhakt, if he is one-pointed in determination, he must never be criticized in any circumstances. Krishna himself says in Sri Bhagavad Gita, apichet suduracharo madhurmam manava sarve ere himantavya sarve prasthi yavasthihi sa. Krishna says, but we should understand what is the meaning of ananya bhakta. Generally we say one-pointed, but here Krishna says, even if he is durachar, if he is of despicable behavior, even if he is a thief or a hunter of women, still Krishna says, I say he is a sadhu, then he should not be criticized in any circumstance. What is the definition of ananya or one-pointed? Then, leaving Krishna, that person will never worship or perform worship of any demigod or demigoddess. Also, they will never take shelter of any other type of sadhan, like karma or jnana. They will always take shelter of bhakti. Therefore, if someone sees such a one-pointed devotee whose determination is fixed in the performance of bhajan, but still is addicted to some bad habits and criticizes them, because of crossing the words of Krishna in the Bhagavad Gita, that person becomes a maha aparadi. But does that mean that we can do bhajan and do everything? Steal, hunt women, drink, all that? No. In such a person, that will simply be nama aparad. Therefore, the conclusion is that such debauched character or debauched activities is generally never seen in such a devotee. But apichet or kadachit means sometimes, in some extraneous circumstances, in some accidental case. This is not the general rule. Therefore, it may be seen that bad activities and bad behavior is never present in a pure devotee, but there may be some chance by some accident that such a thing will be seen in their character. Therefore, the conclusion is, in the one-pointed devotees, their attraction towards Krishna is completely natural. Therefore, we have no right to criticize such a one-pointed devotee. Only Bhagavan can give judgment on such a person. And even if a devotee does fall down from some accidental poor behavior, the conclusion is their bhakti is never destroyed. Just like there is many examples in Sri Ramanuja Sampradaya also.
किसी किसी का मत ऐसा है, विचार ऐसा है, जो व्यक्ति जितने अंश में भगवान का भजन कर रहे हैं उतने अंश में साधु हैं, और जितने अंश में दुराचार करते हैं उतने अंश में भी असाधु हैं। इसको उत्तर में चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं जी भिक्ता ऐसा साधु रे, उसे साधु ही मत, संपूर्ण रूप से साधु, आंशिक रूप में नहीं, एवकार के द्वारा किसी भी अंश में उसे असाधु मत समझो, सर्वांश में ही समझो। इसका कारण है भगवान उसके साधु मानने का प्रस्तुत करते हैं कि वह मेरी भक्ति में सम्यक रूप से निश्चित होती, हमको छोड़कर के किसी भी देवता देवी की उपासना नहीं करता, हमारे लिए ही सब कुछ करता है, किंतु हठात दुराचार में गया है। भक्ति देवी करते वही अनन्य भजन करते, एक दिन भक्ति देवी उस सब दुराचारित्व को सब दूर कर, किंतु अभ्यास कर दिया है बदमाशों ने, जिन लोगों ने, वो उनका नहीं, उनका और वज्र डेप हो जाएगा, नाम के बल पर पाप हो जाएगा। गीता में कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। हे कौंते, तुम कहो, तुम प्रतिज्ञा करो, मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता। हे अर्जुन, भजनिष्ठ व्यक्ति अत्यंत शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। क्यों? अनुताप करता है, हाय हाय हमसे ये दुराचारित्व, अनुताप की आग में उसका दुराचारत्व तो सब कुछ जल करके खत्म हो जाता है, और तब वो शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। उसका कभी नहीं विनाश होता है। अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो, तुम भक्त हमारी प्रतिज्ञा, कोई भक्त प्रतिज्ञा करेगा तो टूट जाएगी, किंतु तुम भक्त है, तुम प्रतिज्ञा करेगा जरूर हमको करना पड़ेगा। तुम प्रतिज्ञा पूर्वक कर सकते हो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होगा। जो लोग गीता के इन वचनों का कृपा पर विचार न कर, उनका मर्मार्थ तथा तात्पर्य न समझ कर, अपिचेतु चारों श्लोक को देकर भजन करने के साथ साथ बुद्धि पूर्वक दुराचार करते हैं, उनके लिए अनुतप्त नहीं होते, उनका साधित्व देश भी नहीं है, तनिक भी वो साधु नहीं है। अधिकांश तो नाम के बल पर पाप आचरण करने की प्रवृत्ति के कारण भयंकर अपराध उनका हो जाता है, जिसे छोड़ करके कुछ दिनों में ही उनका वो रहा सा भजन का आभास भी। ज्ञान मार्ग में जो ज्ञानी साधक है, तनिक भी दुराचार है तो उसका ज्ञान सिद्ध नहीं। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, ज्ञान मार्ग का आश्रय करने वाले जिस सन्यासी का मन और इंद्रिया असंयत रहती है, ज्ञान वैराग्य रहित प्रबल इंद्रिया सात्विक बुद्धि के द्वारा परिचालित होकर वह केवल जीव का निर्वाह के लिए ही दंड धारण करने का विनय करता है। पक्षांतर में भक्त दुराचारियों ने पुरुष की निंदा नहीं देखी है। अजामिल महादुराचारी था और पूर्वाभ्यास के वश उसने बेटे का नाम नारायण रख दिया और नारायण को भी लाड प्यार बुलाता था, और मृत्यु के समय में उस अपने बेटे की याद आई और नारायण नारायण पुकारा। महादुराचारी ऐसा कोई पाप नहीं जो नहीं किया हो, किंतु जम के दूतों ने, जम के दूतों को भगा दिया। वैष्णव के दूत आकर के बोले, क्या ये महाभक्त है, इसका कोई भी पाप ताप नहीं है। नवाबाद से संकेतन परिभाषण तो हम अशेष अगहर, इसका कोई भी नहीं है, और उनको मार करके भगा दिया। इसलिए अजामिल महादुराचारी होने पर भी वैष्णव के दूतों ने, विष्णु दूतों ने उसको भक्ति बताया और उसी से ही नामाभार से उसकी मुक्ति भी हो गई, अंत में बैकुंठ में भी। ट्रांसलेशन
So, Sri Vishnu Chakravarti Thakur is saying, some people think that many angas of devotion that person performs, or that much they are engaged in bhajan, then to that degree they are to be called a sadhu. And in the same way, that much they are addicted to bad behavior, to that degree that that person is not a sadhu. But this is completely incorrect. Krishna says, he is not a partial sadhu. That ananya devotee, that one-pointed devotee, he is complete sadhu. Why? Krishna himself says, because he is fixed in his determination to serve only me, he will never worship any demigoddess or demigod. Everything they perform for me, therefore because he is one-pointed in bhakti, therefore Bhakti Devi herself will cleanse the heart of that devotee. But we should understand clearly that this performance of sinful activity in the devotee is to be considered accidental, not to be habitual. Someone who performs sin, buddhipurvak, knowingly, with their intelligence, understand, within complete knowledge and knowing everything, then they perform sin, this verse is not applicable for them. Such a person is never to be considered a sadhu. That person is a fearful offender at the feet of the Lord, and by continued offense and performance of nam pap buddhi, committing sins on the strength of a holy name, that person's shadow of bhakti will also disappear. Therefore, that one pointed devotee His fall down is not like that. By anuttar, by repentance, that fire of repentance will cause any remaining shadow of bad activity or attachment to be burned to ashes. Therefore, kshipram, kshipram bhavati dharmatma. Krishna says, I say he is completely religious, nama bhakti pranashati. O Arjuna, because you are a devotee, you should declare it very boldly, my devotee is never destroyed. Therefore, the jnanis who are of bad character, the Bhagavatam decries them. They will not achieve perfection if there is some fault in their character. Instead, they move here and there simply filling their stomach. But on the other hand, devotee like Ajamil, who is addicted to the worst types of sinful behavior, indeed there was no sin he had not performed, still, out of some previous good fortune, some previous habit, he gave the name of his son as Narayan. At the time of death, he remembered his son and chanted, Narayan, Narayan. As a result, the Yamadutas, when they came to catch him, the Yamadutas were expelled by the Vishnudutas, who said, he is a great devotee. He has no sins. His sins have been burned to ashes. He is pure. Because Ajamil chanted Namabhas, which are of four types, Sankirtyam parihasya vastovam helaya evavai vaikuntha namagrahamiya shesha agavavidu. If one performs this chanting of the name as a semblance of chanting, then even then there is no question of sin remaining in that devotee. What to speak of someone who is ananyabhak, who is one-pointed.
Mahaprabhu ji ke avdan ke sambandh mein kuch batlao to varnan karo.
सकता है So, Srila Maharaj said to me, he speak about glorious Mahaprabhu, what Mahaprabhu gave to us. Why in this? But I think English speaking is, I know, feel happy. Can you speak, but heart is becoming like complete off. Because bhav cannot come by this English. So better Pujpat Damodar Maharaj will have to translate if our Vishnu Devas Maharaj will have to translate. So this is good because this is not my language. Hari Bol. So Mahaprabhu ji ka jo vaishishtya hai, jo avadan hai, सच में हम लोग महाप्रभु जी का विशिष्ट भोजी है. उन्होंने जो कुछ हमारे गुरु वर्गों को प्रदान किया वही हम लोगों का जीवात्मा है. जितने भी हमारे आचार्य थे, रूप को स्वयं पाद हो, जीव को स्वयं पाद हो, सनातन को स्वयं पाद हो, ये सभी के जो सिद्धांत है, जो इनके जो लेखनी है, सबके मध्य में महाप्रभु जी का ही मनोभाव है. उन्हीं का जो विचार है, उनका जो अवदान है, उन्हीं चीजों के हमारे गुरु वर्गों ने रखा. जो भी आज टीका की पन्नी भागवत आदि का दामोदर स्तर का या माधुरी का दमनी आदि जो कुछ भी ग्रंथों का अनुशीलन कर रहे हैं, उनके मूल में श्रीमद महाप्रभु जी. महाप्रभु जी तो कहीं पर अपने हाथों से कुछ ग्रंथ आदि का प्रणयन नहीं किए, लेकिन उनके मुंह से जो जो शब्द निकले उन्हीं को उनके जो अनुचर ग्रंथ है अपने शिक्षा तक आदि में और भी जितने शास्त्र भक्ति रसान सिंधु आदि सब महाप्रभु जी का वचन का ही उनका वैशिष्ट का ही दान है. जो कहने के बस कथा नहीं, महाप्रभु जी ने हम लोगों के लिए क्या नहीं दिया. जिनको वैशिष्ट को उनके अवदान को देखना है तो उनके शिक्षा तक में देखिए. 8 या 10 श्लोकों में ऐसे तत्व उन्होंने रख दिया कि यदि कोई शिक्षा तक का सही सही अनुशीलन करे तो समस्त वाद विवाद मतवादों से ऊपर उठ करके अपने साधन साधन में स्थित हो जाएगा. कोई भी व्यक्ति उसके सामने किसी तर्क युक्ति से उसको अपने भजन से हटा नहीं सकता, क्योंकि शिक्षा तक एक ऐसा सुंदर महाप्रभु जी का अवदान है, देन है, कि जहां पर जितने वाद विवाद है सबको इस 8 श्लोकों में समाप्त कर दिए. और बहुत कुछ है जिसको लेकर के जीव गोस्वामी पाद आदि और आचार्यों ने बहुत विवेचना की. वैसे महाप्रभु जी के अनंत शिक्षाएं हैं. उन्होंने ब्रज के संबंध में भी कैसे संबंध से युक्त होकर भजन करना है, कैसे ब्रजवासियों को अनुगमन करना है इत्यादि बोले. और जो उसके विरोधी लोग हैं, जो ब्रह्मवादी को मानते हुए जो भगवान के वास्तविकता को स्वरूप को नहीं मानते, उनको भी उन्होंने चूर्ण विचूर्ण किया. जो कुछ भी किया महाप्रभु जी किए, उसी बात को, उसी सब तत्वों को गोस्वामी पाद ने लिया. यहाँ पर कहने के तात्पर्य में किस पक्ष को लो, महाप्रभु जी ने जो अवदान दिया कोई ऐसा पक्ष नहीं जिस पक्ष को उन्होंने छोड़ा हो. चाहे किसी भी तर्क की बात हो, युक्ति का हो, कोई भी किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी आचार्य को, हर पक्षों को उन्होंने समाधान सामंजस्य किया. जिनको बाद में जीव को स्वयं पाद अपने तत्व संदर्भों में महाप्रभु जी का जितना जो सिद्धांत सबको रख, ये तो उनका तात्विक पक्ष. जीव को स्वयं पाद जी बोले कि महाप्रभु जी का जो अवदान है अचिंत्य भेदा भेदवाद अस्मत मत अचिंत शक्ति महत्व, ये मेरा मत नहीं, हमारे महाप्रभु जी का मत, श्री चैतन्य महाप्रभु मत विदम. वहां पर बोले देखो भगवान की शक्ति ऐसी अचिंत्य है, जब शक्तियों पदताम वादी नाम विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैसा मुहूर्त मोहम तस्मै नमो अनंत गुणाय भुवने. बोले भगवान की ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के संबंध में कहने पर व्यक्ति वाद विवाद में फंस जाता है, क्योंकि अविचिंत है. जब शक्तियों पदताम वादी नाम विवाद संवाद भुवो भवन्ति, और यही कारण है कि अनंत प्रकार के वाद मतवाद इस संसार में खड़ा हो गया. अनेक प्रकार के मायावाद, मायावादों में कितने प्रकार के विवाद हो गया, प्रतिबिंबवाद, परिच्छेदवाद, ब्रह्मजीव ऐकवाद, विवर्तवाद, इतने जो वाद थे, अगर इन वादों से संवाद ना किया जाए तो भक्ति में कैसे प्रवेश हो. तो जीव गोस्वामी पाद जी महाप्रभु जी के सिद्धांतों को कहते, जिनके शक्ति के संबंध में कहने में विवाद संवाद हो जाता है, दूसरे पक्ष वाले भी नाराज हो जाते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही, आप कुछ भी कहो। शंकराचार्य के मतों को सबसे पहले जीव गोस्वामी पाद जी ने जितना जोरदार ढंग से खंडन किया, आज तक कोई आचार्य जो ऐसा नहीं कर पाए। शंकराचार्य जो भी साचा शंकर है, लेकिन फिर भी बोले वो जगत को मोहित करने के लिए, हमें उनके मतों से बच के अपना भजन करना होगा। जो असुरी प्रवृत्ति के वो तो उसमें फंस ही जाएंगे, लेकिन जिनको थोड़ा भी गुरु वैष्णव कृपा प्राप्त करना है उनसे बचना हो। उनके जो सिद्धांत था उनको जीव गोस्वामी जो उन्होंने कहा कि श्लोक अर्धेन प्रवच्छामि तदुक्त ग्रंथ कोटुभि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म एव नापर। शंकराचार्य के पूरे शास्त्रों का जो सूत्र है, पूरे व्याख्या का जो सूत्र है, केवल दो तीन बातों में समाप्त कर दिया। आधा श्लोक में बोल दिया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म एव नापर। जीव गोस्वामी पाद जी बोले ब्रह्म सत्यम, ये तो बात सही है, लेकिन तुम जिस ब्रह्म को सत्य मानते हो उसकी अस्तित्व कहाँ है, उसकी प्रतिष्ठा कहाँ है? तुम तो केवल ब्रह्म को मान रहे हो, लेकिन ब्रह्म का जो प्रतिष्ठा है, ब्रह्म कौन है, उस पर तत्व का अनुशीलन करो। एकमेव परम तत्व स्वाभाविक अचिंत सत्य चतुर्धा अवस्थिष्ठते स्वयं रूप तद वैभव रूप जीव और प्रधान रूपे न। तो तुम केवल एक ब्रह्म को, एक पद को मानने से नहीं होगा, क्योंकि जाजा श्रुति जल्पसि निर्विशेषम। श्रुतियों में जहां पर कहीं पर ब्रह्म को निर्विशेष निर्विकार इत्यादि जो बोला, वो केवल अविचिंत के कारण बोला, एक पक्ष में बोला, सर्व पक्ष में नहीं। और दूसरे पक्ष में तुरंत बोले उनका जद्यपि हाथ नहीं है, लेकिन अपानी पादो जमनो गृहित। वो निर्विकार का मतलब ये नहीं कि वो उसमें कोई नहीं होता, अप्राकृत विकार है। राधा कृष्ण प्रणय विकृत, अप्राकृत गुणों से, अप्राकृत विचारों विकारों से, अप्राकृत स्वरूपों में अवस्थित है। तो उसको एक पक्ष लेने से नहीं होगा। तुम्हारा जो ब्रह्म है जिसको तुम सत्य मान रहे हो, वो ब्रह्म को हम सत्य नहीं मानते, क्योंकि उसकी तुम कोई प्रतिष्ठा ही नहीं की। ब्रह्म का जो परम ब्रह्म है, उस संबंध को तुम, वस्तु को ज्ञान करो। दूसरी बात कर तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, लेकिन जगत कैसे मिथ्या होगा? ये जो भी कार्य महाप्रभु जी का सिद्धांत, सदिदम उत्थितम सदिति चेन ननु तर्क हतम व्यवचरती क्वचा क्वच निरसान तथैव वयो व्यवहृतये विकल्प सिद्वंध परंपराया भ्रमयति भारती तौर वृत्ति विरुद्ध जड़। कोई भी वेद इस बात को न मानते, वेद के मंत्र स्पष्ट कहते सदिदम उत्थितम सदिति, ये पूरा विश्व सत्य है। जतो वै मानी भूतानि जायन्ते, सत्य उत्पन्न होने कारण जगत भी सत्य है। कहीं कहीं पर जो मिथ्या आदि कहा गया केवल वैराग अर्थम असद वचन, वैराग के लिए कहा गया, लेकिन वास्तविक पद में सदिदम उत्थितम सदिति। क्योंकि अगर संसार को झूठा मान लिया जाए तो जगत व्यवहार ही रुक जाएगा, क्योंकि कभी भी झूठे वस्तु से व्यापार नहीं हो सकता, संसार नहीं हो सकता। सदिदम उत्थितम सदिति चेन ननु तर्क हतम। जी गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि श्रुति कर इसमें कोई तर्क का स्थान ही नहीं है। बोले नहीं नहीं, कभी कभी असत्य वस्तु से भी व्यापार करते हुए देखा गया है, व्यवचरित कुछ कहीं कहीं पर व्यवचार भी हो रहा है। कई बार ऐसा होता है झूठे 500 के नोट से भी व्यक्ति बाजार कर लेता है, नकली नोट से। असत्य से भी सत्य की उपलब्धि हो जाती है, वस्तु खरीद लिया जाता है, तो फिर इसको कैसे सत्य माने? असत्य असत्य से भी व्यापार करते हुए देखा गया। कहते हाँ व्यवचरति क्वच, कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन कहाँ मिलता है? बोला अंध परंपरा, जो अंधे लोग हैं जिनको उस वस्तु का ज्ञान नहीं, उस रुपये की पहचान नहीं है, वो तो नकली नोट को असली मान लेगा, लेकिन जो विवेक संपन्न है तुम्हारे उस नकली को कभी नहीं असली मानेगा। और कहीं ऐसे जगह पर चले गए तो हो सकता है पकड़ के जेल भी दे। तो अंधों के बीच में कभी कभी ऐसा देखने को होता है, क्योंकि जो तुम विवर्तवाद कह रहे हो कि जगत विवर्त है ही नहीं, रस्सी में सर्प का भर्म, तो यदि जगत विवर्त है ही नहीं तो एक अस्तित्वहीन वस्तु, उससे वस्तु की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? जैसे उदाहरण देते जी को सही पास कि सीपी में रजत का भर्म, वास्तव में वहां सीपी में रजत नहीं है, क्योंकि उस सीपी में जो रजत की प्रतीति हो रही है उससे पात्र का रचना नहीं हो सकती, और उस पात्र के द्वारा भोग भी नहीं लग सकता, क्योंकि वहां अस्तित्व ही नहीं रजत का। लेकिन रजत तो अपने स्थान में है कि रजत झूठा है, सीपी में रजत नहीं है, रस्सी में सर्प नहीं, लेकिन सर्प का अधिष्ठान है और कहीं पर चांदी भी है, और उससे पात्र ही बन रहा है, उसमें भगवान का भोग भी लगता है, और उससे दिव्य वस्तु को उपलब्धि हो रही। जो कोई जैसे कोई 10 रुपया भगवान का आगे चढ़ा रहा है तो क्या असत्य है? और यदि असत्य है तो उससे नित्य वस्तु कैसे प्राप्ति हो रही, उससे सेवा कैसे हो रहा है? तो तुम्हारा जो जगत मिथ्या है वो भी आधारहीन है, सिद्धांतहीन है, और तुम जो जीव को ब्रह्म कहते हो ये भी बात गलत है। ये महाप्रभु जी का सबसे अद्भुत सिद्धांत, क्योंकि अपरिमिता ध्रुवांश तनु भृतो यदि सर्वगता, वेद मंत्र करेगा अगर जीव ही सर्वगता हो जाए, सब कुछ हो जाए, भगवान हो जाए, तो तरह ही शास्त्र देती। ये जो शास्त्र और शासन का जो भाव है, सेवक और सेव्य का भाव, वो कहाँ रहेगा? और यदि सब ब्रह्म ही हो जाएंगे तब फिर कौन किसके ऊपर शासन करेगा? फिर तो सब भगवान में लड़ाई हो जाएगी, तो फिर कौन किसको देखेगा? भागवत में एक जगह पर कहीं इसके पक्ष में बड़े सुंदर एक आते हैं, जब जब दिया गाय विभाव अंतिम तत् तत् बपू पढ़ने से तम भक्ति जोग परिभावी हृदय सरोज। बोले आपके भक्ति जोग से परिभावित हृदय वाले भक्त जिस जिस स्वरूप का चिंतन करते हैं, उन भक्तों को पर अनुग्रह करने के लिए आप उन्हीं उन्हीं रूपों में प्रकट हो जाते। जब भी भगवान का जो कृष्ण के जो वास्तविक रूप है किशोराकृति है, श्याम एवं परंग रूपांग और बया कैशोरकम देय, लेकिन वह किशोर स्वरूप भक्तों के भावना के अनुरूप कभी बाल भी हो जाते हैं, कभी पौगंड भी हो जाते हैं। जब जब दिया और गाय विभावंती, किंतु बाल पौगंड राम नृसिंह बावन होना ये कोई भगवान के कोई 10-20-50 रूप नहीं है, एक ही परम तत्व, एक मेव परम तत्व स्वाभाविक अचिंत शक्ति या चतुर्थावत्तिष्ठते, वही एक तत्व राम नृसिंह बावन आदि रूपों में। लेकिन यहाँ पर राम नृसिंह बावन भेद नहीं कर सकते, लीलागत उसमें है रसन उत्कृष्ट है, लेकिन है एक ही तत्व। अगर जीव भी भगवान के समान हो जाए और उनके साथ तुलना कर होते गलत है, जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अपरिमिता ध्रुवांश तनु भृतो यदि सर्वगता, जीव यदि सर्वगता हो जाए, सब कुछ जानने लग जाए, माया का ईश्वर हो जाए, तो फिर पूरा जो प्रकृति का नियम वो बिगड़ जाएगा। तरह न शास्त्र देते नियम हो ध्रुवन अजनि च जन्मयम तद विमुंच नियंत्री भवे सम मनुजानताम जद मतंग मत दुष्ट। अगर जीव ही नियंत्री हो जाए, जैसा कहते हैं कि माया में जो आ जाते हैं तो जीव हो जाते हैं, और माया से मुक्त होने के बाद वो ब्रह्म हो जाता है, वो ब्रह्म को भी माया में बसी भूत समझते हैं। बोला ऐसा सिद्धांत जो दुष्ट मत जद मतंग मत दुष्ट है। तो ऐसे अद्भुत अद्भुत सिद्धांतों को अगर महाप्रभु जी नहीं आते तो एक गुरु वर्गों के विचार में मुंह से सब नहीं निकलता। सारो भट्टाचार्य जी को जो सिद्धांत के द्वारा खंडन आदि किए, प्रकाशानंद जी को जो खंडन आदि किए, उन्हीं सब तत्वों के हमारे गुरु वर्ग में रखे। इनका सिद्धांत का भी वैशिष्ट रहा और रस का भी वैशिष्ट रहा। सिद्धांत में भी चरम सीमा पर आरूढ़ हो रहे हैं तो रस में भी इनकी कोई तुलना नहीं है। जिस प्रकार के ब्रज के रस में ही भक्ति को जैसे महाप्रभु जी कृपा से प्रदान किए, उनका अद्भुत अवदान है। जो आजकल हम जैसे कुछ बार महाराज जी दामोदर अष्टक आदि का जो पाठ कर रहे हैं, अगर सनातन गोस्वामी का टीका आदि न होते सूखा रह जाएगा दामोदर, रस भरती है। जैसे उन्होंने इदंते मुखाम भोजम अवक्त नीले प्रीतम कुंतले स्निग्ध रक्त गोप्या मुहुर् चुंबितम बिंबा रक्ता धरंग में सदा में मनस्या विरासम की मन में इत्यादि जो बोले अलम लक्ष्य लावे। ये जो सनातन गोस्वामी जो उनकी जो व्याख्या करी दंते मुखाम भोजन, कृष्ण का जो मुखार बिंद है कितना सुंदर है। इन गोस्वामियों के यदि भावों का अनुगमन नहीं करेंगे तो ये मुखाम भोज का कभी दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अवक्त नीले बोल रहे हैं। जिसका कोई अभिव्यक्ति नहीं है कैसा है, लेकिन फिर भी गुरु वर्गो ने अपने अनुभव के द्वारा जितना उनको हुआ उसको अभिव्यक्त किया। श्री सनातन गोस्वामी जी गोसिंह पादी टीका में कई जगह पर बोलते हैं कि कृष्ण के चरण से लेकर शिखा पर्यंत सभी दर्शनीय है, कोई भी एक ऐसा अंग नहीं है जो देखने योग्य ना हो। तय दर्शनीय अवे उदारे विलास हास्य चित बांग सुक्ते हृत आत्मनो हृत प्राणं च भक्तिर अनिच्छतो गतिर अनवी प्रणुक्ते। कपिल देव जी के इस बात वचन को बिल्कुल दामोदर अष्टक से मिलता जुलता है। वहां भी जो कह रहे परंग देव मोचम न मोछा बधिम बा न चंड बिरने हम बड़े साध पी है इदंते बपुर नाथ गोपाल बालम सदा में बनस्या विरासतम की मन। अगर ये विग्रह इस गोकुल में वृंदावन में हमारी स्फूर्ति हो सिर से लेकर के नट से लेकर शिखा पर्यंत दर्शन होता रहे तो हमें अन्य लाभों का ज्ञान है, क्योंकि जो दर्शन है वो अभय जो है अनुपर्तन बड़े ही दर्शनीय है। दर्शन नहीं उदार, कृष्ण के जिस अंग से जो भी मांग लो, चरणों में उतना सौंदर्य भरा है, ध्वज ब्रज अंकुश जब आदि से 19 चिन्हों से युक्त, एक एक चिन्हों के भी अगर ध्यान किया जाए तो वही साधक के लिए बहुत खुशी चीज हो जाएगा। और ये जो चिन्ह का जो ध्यान है, अगर गोस्वामी का नहीं आते तो हमें अनुभव ही नहीं होता कि उनके चरणों में कितना चिन्ह और कैसे ध्यान करें। दर्शनीय अभय उदार, चरण से लेकर के घुटने, कमर, वक्षस्थल, उदर प्रदेश, कंठ देश सभी है, लेकिन क्या तो उनमें भी अति से दर्शनीय कोई वस्तु है तो मुखारविंद है। क्यों? क्योंकि विलास हासे मुखारविंद में अन्य अंगों की अपेक्षा वैशिष्ट एक तो मधुर मुस्कान और इच्छित बाम सुख तिरछी कटाज, और फिर उनके कर्ण प्रदेश कई कमलों के द्वारे आच्छादित है, मुख कमल, नयन कमल, तो तय दर्शनीय अभवे उदारे बिना सहास इच्छित बाम सुखते। कैसा है? बोले जस्य आननम मकर कुंडल चारु करना भ्राजत कपोल सुभगम सुविलास हासम नित्य उत्सव तत्री त्रिश्री पिबंतो नारजो नारस्य मुदिता कुपिता निवेश। जिनके मुखार भी मकर के कुंडलों से आच्छादित हो रहा है, सुशोभित हो रहा है, ऐसे लग रहे मानो श्याम मेघ के ऊपर बिजली बार बार चमक रही हो, और चमक ही नहीं रही, स्थिर हो चुकी हो, क्योंकि आकाश की जो बिजली चमकती हो तो एक क्षण में विलीन हो जाती है, क्षण प्रवाह है, लेकिन कुंडल जो है हर समय उनके मुखार उनको सौंदर्य को बढ़ा रहे। अगर काले श्याम मेघ के ऊपर सांद्र पयो तो सौभाग्य के ऊपर बिजली स्थिर हो जाए तो उसका सौंदर्य देखने लायक होता है। और फिर उसके ऊपर यदि हंसों की पंक्ति चले, उनके जो दंत पंक्ति हो मानो मेघ के ऊपर हंसों की माला है, पंक्ति है, जस्य आननम मकर कुंडल चारु करना भ्राजत कपोल सुभगम सुविलास हास, कपोलों पर और मधुर हास्य हृद आत्मनो सुविलास है। जस्य आननम मकर कुंडल चारु करना भ्राजत कपोल सुभगम सुविलास हासम नित्य उत्सव तत्रिपि त्रिश्री तिवन। ये जो कृष्ण के जो सौंदर्य है ये ब्रजवासियों के लिए नित्य उत्सव है, क्योंकि ये जो मुखार भी जब पूरा दर्शन नहीं होता एक समय में, इसलिए अतृप्त रहते, कुछ केसों से ढका हुआ है, कुछ गांवों के धूल से ढका हुआ है, इसलिए तो गोपियां कहते दिन परिचय नील कुंतले वन रुहानम विप्रदावृतम घना रजस्वलम दर्शन मुहूर् मनसिन स्वरम वीर जच्छसी। अगर पूरे सौंदर्य के एक साथ मुखारविंद का पान हो जाए तो व्यक्ति अपने धैर्य को खो देगा, अपनी चेतना को खो देगा। तो कृष्ण ने धीरे धीरे अपने सौंदर्य को अपने भक्तों को पान कराते हैं, और एक गोस्वामी गणों का उदाहरण है जो उनके माध्यम से हमें प्राप्त होता है। इसलिए तो किसी कवि ने कहा कि देखा नहीं वह मोहन मूर्ति बिनु बाधा, वही कह सकते क्यों कर कुल कलंक नहीं हुई राधा। इस मुखारविंद को बिना बाधा जिसने नहीं देखा कृष्ण का, वही कह सकते राधिका जी घर परिवार छोड़ के क्यों बन को दौड़ते, क्यों कहते स्वामी निहंतु व्यसंतु पूरा सपत्नया भरतुर भजन तु गुरु पितरश्च लाजम एतावती यदि कुलम कलंकनी तथास्तु रामानुजे तनोतु ममानुरागम। ये जो अभिव्यक्ति हो रही है, ये जो ऐसा सौंदर्य जो है, सच में महाप्रभु जी नहीं आते थे आज हमें नहीं समझ में आ पाता, क्योंकि उसको लोगों ने अव्यक्त निर्गुण निराकार निर्विशेष करके ही छोड़ दिया था, लेकिन महापुरुष जी वैशिष्ट उन्होंने दिखाया कि जिसको तुम ऐसा कहते हो उसको जरा जाके देखो, तुम जाके कालिंदी के तट पर देखो, जब नारद आजे सुखे अगम्य वृंदावने व्यंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतु हरने के विज्ञा अत्रास्ति किंचित परम रहस्यम। वृंदावन में कोई परम रहस्य है, बहुत कुछ है, क्योंकि 5 मिनट में किस विषय को कहूँ, यहाँ पर सब विषय ही टूट फूट जाते हैं। लेकिन महापुरुष जी महाराज जी का आदेश से एक दो शब्द अपने वचन से कहा, इसमें जो भी भूल त्रुटि उसके लिए क्षमा चाहूंगा। कई दिनों से कथा सुनने का शाम को सहयोग नहीं मिल रहा था किसी कारण से ऐसे, लेकिन आज कुछ कथा भी मिले को मिला और साथ में कीर्तन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे करते अपने वचन का ही विराम देता हूँ। वांछा कल्प करु कृपा
ओम ज्ञानस्य विनन्दस्य ज्ञानार्जनसलकय चक्षुरन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः. First of all, I would like to offer my most humble obeisances unto the lotus feet of my Diksha Guru, thousands of times, millions of times, my Shara Pushpanjali, unto His Divine Grace, C.C. Mad, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. And then again, I would like to offer my Shara Pushpanjali millions of times unto the lotus feet of my Sri Sri Guru, His Divine Grace, C.C. Mad, Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj. I would also like to offer my respects to all of the Chidandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas and Vaishnavis who were attending the conference. Srila Gurudev has ordered me to speak something about the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu. By his mercy, by the mercy of Srila Prabhupada, I will try to relate some few things that I have learned. There is a story about Sri Chaitanya Mahaprabhu's taking sannyas and what was the meaning behind his sannyas lila. In this conversation in Sri Chaitanya Charitamrita, he relates that Mahaprabhu is lamenting that the Mayavadis, the Karmavadis, the logicians, the students, so many persons, they have escaped his net. He wanted to flood the whole world with love of Godhead, but somehow these impersonalists and others are fleeing, and he could not capture them. So he wanted to capture them. He wanted to capture them, and so therefore he devised this idea, this trick. I'm going to trick them. I will take sannyas, and then they will have to offer me respect, and by that service, eventually, they will be captured up in the flood of love of Godhead. But we should understand also, like besides this statement here, there is some other story, like in Chaitanya Bhagavat, how when Sri Chaitanya Mahaprabhu was giving class to his students, to give some examples, to giving class to his students, he started chanting Gopi, Gopi, Gopi. Like this, one of his students became angry. Why you are chanting Gopi Gopi? If you are a Vaishnava, you should be chanting Krishna. So then Mahaprabhu, he was deep in the mood of Radha. So he said, why I will chant the name of that crooked person, Krishna? That he has killed Bali from behind the tree. He has stolen all the wealth of Bali Maharaj. He has made the ears and nose of this woman to be cut off for his own purposes. So these are similar to the statements of Srimati Radhika in the Pramara Gita. So like this, he was in this mood and he became angry at the student and chased him with a stick. So the student, he became upset and he started speaking with the other students, oh, why he is chasing us? We are also the sons of Brahmins. He is nothing special. How is it that he is going to beat us with a stick? Only he is the son of a Brahmin. He is not a king that he can take a danda and give us such punishment. So like that, they began to talk. Then Mahaprabhu, he started thinking. And he was speaking out loud that I have made this Pipalikanda. Pipalikanda is a kind of medicine that removes mucus from the body. So I have made this medicine to remove the mucus from the body, but it has increased the mucus. It has made it worse. So therefore, he said, I will have to devise some means to resolve this issue. Nityananda, he understood. He could understand and he began to lament. Now Mahaprabhu will take sannyas. He will shave his sika, he will shave his hair, he will get rid of his Brahmin thread and he will become a sannyasi. Also, there is the story of how the Brahmin, who was not allowed to go to the bhajan, the kirtan, at the house of Srinivas, Srivas Thakur,
that he cursed Mahaprabhu. Because you wouldn't let me enter this house, you will have to leave the happiness of household. But Mahaprabhu has a very confidential conversation with Lokanath Goswami, which is related by Nityananda Das, the disciple of Janaka Mata, in the book Prem Vilas. And in this confidential conversation, he tells him, these are only external reasons, the curse of the Brahman, etc. But actually, he said, I have come to go to Desh in this mood of Srimati Radhakant. And I want to experience the separation that she feels in her love for Sri Krishna. That she has become very lean and very thin and has neglected herself, being in such anxiety in separation from me. She does not even look at the face of another man. And in this anxiety, she has given up everything for me. She has given up her family, her wealth, all these things. But still, she is suffering. Still, she is suffering this pain. And in this pain, sometimes she begins to curse and speak badly about me to the flowers and the Yamuna, etc. But then as soon as she sees me again, then she becomes very happy. Like this, he is relating all these things to Lokanath Goswami. Well, then he tells him that I have come only for this purpose. I have come to accept this mood of separation. A mood that even my friends, my servants, my mother, my father, no one knows. Only the gopis understand this mood. And because of Srimati Radharani's deep love for me, I am greatly indebted to her. Therefore, my only purpose to take sannyas, he said, was out of necessity to take on the mood of Srimati Radharani. Then he explains how when Srimati Radharani, she is always decorating herself in blue cloth, which is the complexion of Bahadur has come. No, he's gone. That this gives her happiness when she accepts the clothes, the blue colored cloth, the color of Sri Krishna's body. But in separation from him, she accepts Aruna Vastra. She accepts the saffron colored cloth. And she thinks of herself as the maidservant of Sri Krishna. And in this separation mood, the gopis and Radha and the gopis have given their entire life to Krishna. And so Mahaprabhu says, now I want to give my life to Radha. Therefore, I will accept the complexion of Radha, and I will accept the saffron-colored cloth, and I will become her maidservant. And then, by this act, I will attain happiness. I will take on the saffron-colored cloth of the mood of separation, and I will sing the glories of Srimati Radharani. Her glories are unlimited. O Lokanath Goswami, her glories are so unlimited that even if I took birth in this world 100 times, I could not finish singing the glories of Srimati Radharani. I will sing these glories all over the entire universe, flooding the universe with the glorious fame of Srimati Radharani, and by this act, I will receive her mercy. And when I receive her prema, then I will dance and sing kirtan, and the dust of Vrindavan will be all over my body. So in this way, Mahaprabhu gives this very confidential meaning of why he has taken sannyas. He has given this to Lokanath Goswami. That this is the real meaning. That I want this mood of Srimati Radharani. I want to sing her glories. I want to inundate the whole universe with the glories of Srimati Radharani. This is also the responsibility of those persons who follow in the footsteps of Sriman Mahaprabhu and accepting the Aruna Vastra, accepting the saffron cloth, accepting this mood and moving into the preaching of the glories of Krishna consciousness, of the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur established the Tridandi Sannyas, the Tridandi Bhikshu Sannyas, after the great teachings that have been come down for so many thousands of years. Srila Gurudeva has given this information in his five essays book about the ancientness of the Tridandi Bhikshu Sannyas. And he gave this under the order of Srila Bhakti Vinod Thakur. This is Bhakti Vinod Dhara. Srila Bhakti Pragyan Kesha Goswami Maharaj gave one song about Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta, in which he told Bhakti Vinod Dhara Jala Shankara, that this Dhara of Srila Bhakti Vinod Thakur is the water flowing from the Shankh in the arc to Srila Prabhupada. And he says, Roda Nahiyar, there is no stopping the flow of this Bhakti Vinod Dhara. And Srila Bhakti Vinanta Trivikram Maharaj, in his arti song in praise of Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj, told that Sri Vinoda Dhara Thaila, that this oil in the Panchapradeep lamp being offered in the arti to Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj, that this Tyler, this oil, this is the Bhakti Vinod Dhara, which is illuminating the knowledge of the transcendental knowledge of Krishna consciousness to everyone. And what is this Bhakti Vinod Dhara? Srila Bhakti Vinod Thakur, in one poem that he wrote, says, Radha Pada Virakabu Krishna Nahini. No one can obtain Krishna without worshipping the feet of Srimati Radha. It is not possible. Radha Dasira Krishna Sarva Vede Bole. All the Vedas declare that Krishna becomes purchased by the maidservants of Srimati Radha. So this is the glorious teachings that Sri Chaitanya Mahaprabhu has brought to us in his Sannyasa Lila. This is the Bhakti Vinod Dhara which has been given. But something more special, just as Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta brought this Bhakti Vinod Dhara, just as Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj, my Srila Prabhupada Bhakti Vinod Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Srila Maharaj, all of them brought the flow of this Bhakti Vinod Dhara. Now, Roda Nahiyar, under the guidance of Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj, the Bhakti Vinod Dhara is being poured all over the world. Evo! The whole universe will hear the glories of Srimati Radharani by the glorious maidservant, Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj.
So, Srila Vishwanath Chakravarti composed one shloka, Aradhya Bhagavan Vajeshtanayas Tadam Vrindavanam. Ramyakachit Upasana, Varmyakachit Upasana, Vagena Badu, Vakyanaya Kapita Badu. Srimad Bhagavatam, Ramanama Mangumanam, Prayama Pumatu Mohan, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Matadaram, Tatadaram, Naparaham. In this shloka, he captured the essence of the speciality of Mahaprabhu and the speciality of Upanuga, Gaudiya, Guru Vaghava, Upanuga line. In this shloka, he is saying that Aradhya Bhagavan Vrijeshtanayas, the worship of Sri Krishna in Vrindavan, Vrajendanandana Sri Krishna, is the topmost worship. And the worship of his holy dham, Vrindavan dham, is included in that. Then Ramyakachit Upasana Bhagyanaya Kalpataya Du. The method of worshipping Krishna, Sri Krishna, Vrajendanandana Krishna, is that performed by the gopis. Their bhajan, their service, their worshipping of Krishna is the topmost form of bhakti, the purest, the sweetest, the highest. Their mood of complete self-dedication, no self-interest whatsoever to Krishna, this is the highest, topmost, sweetest form of bhakti. So, Sri Chaitanya, Srimad Bhagavatam Pramanamur, where is the evidence for that? Srimad Bhagavatam. Bhagavatam is the topmost evidence because it's the essence of all scriptures and it's actually explains everything from top to bottom. So in Srimad Bhagavatam, especially in the Ras Panchadhyaya and the five gits that the gopis glorify Krishna, that mood is given. And we should also, if we want to get that kind of rare bhakti, we should follow in the footsteps of the gopis. Only by following in the footsteps of the gopis and being under the anugatya of these particular gopis can we get that topmost bhakti, Brajpem, especially Brajpem in Manjari Bhav. So then who's... This is the opinion, this is the consideration of Srimad, of Sachinandan Gaurahari, and Vishwanath Chakravarti Thakur says, I have no regard or no, I have no respect, no regard for any other cheating opinions, for any other opinions. This is one-pointed, this is what I want to do, this is the topmost thing, there's nothing else higher, better, more attractive than that. So therefore, this is what we should follow. This is like a sutra, and from this sutra, it's like a condensed saying, our philosophy is there, and within that is the speciality of our line, is that we're not worshipping Krishna in the mood of those gopis who are naikas, who are heroes and want direct relationship with Krishna. We are worshipping as conditioned souls. We can only get up to that position and perform that bhakti if we adopt the mood of service to Srimati Radhika. That means Radha Dasyam, or Manjari Bhav, or Palya Dasi Bhav. This is the speciality of our Rupanuga line, like that. So, now Bhakti Vinod Thakur, he took these teachings of Vishwanath Chakravarti Thakur and expanded it in the first invocation shloka of Dashmula Tattva. And the whole of Dashmula Tattva is really an explanation of that shloka, but from more philosophical point of view. So, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Radha Bhagavan shloka, is like from a rasa vichar, rasa tattva vichar, while Srila Bhaktivinoda Thakur's the invocation to Dashmula Tattva and the whole of Dashmula Tattva is more from a tattva vichara, from the point of view of philosophy, establishes the philosophical foundation for following in the mood of the Manjaris, like that. Now, in the biography, Srila Gurudev says, anyone who doesn't know these two shlokas, and I admit I still don't know the second shloka by heart, but Gurudev says, anyone who doesn't know these two shlokas is not really my disciple. So Gurudev expects very high standards from us. Why? Because what he is offering us is something very special. And I can only speak for myself, but I know many other people in the Sangha share my feeling that we only came here because something very special is being given here, which we cannot hear and cannot get anywhere else in the universe actually. So if we want to get that something special, then we have to follow in the footsteps of the gopis and in the footsteps of those who came from the spiritual world and can give us this rare gift. And this is, as far as I understand, the speciality of Mahaprabhu. What he came to give, that special thing he came to give, was Unato Valarasam Svabhakti Shriyam. Unato Jalaras refers to Srimati Radharani Mandanakya Mahabhar, and Svabhakti Shriyam refers to the beauty, her beauty, that means her helpers, the Manjaris and the Sakis, like this. This is, if we want to do this, then we have to follow. And to follow means we have to follow Srila Gurudev and really, you know, seriously take his instructions and his requests, his orders, his mood into our heart. In this way, our life can become successful and we can become completely blissful and happy in this life and in the next life. Itarai Gurudev Premanante.
Today, our devotees who have been working for many, many months, even up till last night and this morning, they finished the printing of the new magazine, The Rays of the Harmonies. Shripad Amal Krishna Prabhu, Shripad Krishna Karunya Prabhu, Shripad Jai Gopal Prabhu, Srimati Bhayayanti Mala, Devi Dasi, they worked tirelessly to compose and publish this beautiful magazine. Srila Gurudev became very happy this afternoon receiving it, and I can recommend that the articles in it are so amazing that you will receive very much deep and very valuable inspiration by studying this magazine. It is available just after class on the book table for everyone. Yeah. Then, secondly, we want to announce the names of the devotees who received initiation today. Maharaj, Maharaj, you have to help with a few names. Today receiving initiation Diksha, Srimati Phuleshwari Devi Dasi. Phuleshwari Devi Dasi Ki Jai. Karuna Mai Dasi receiving Diksha. Madeline, School Gulmaro. Okay. From Rio de Janeiro. Malika Devi Dasi. Rasa Kelly Devi Dasi receiving Harinam and Diksha from Russia. Same name. What is that? Sushma Devi Dasi from Patna. Same name. Sunita Devi Dasi from Patna. Same name. Martina Webster from England. Madhu Mati Devidasi. Krishna Ram Ranjan from South India, Krishna Das Prabhu. Yasovati Nandana, son of Gokul Prabhu, same name, receiving Gopal Mantra and Harinam. Banabhat Subna from Tirupati, Basanti Devi. Bhupen Basumatri from Rupsanathan Gaudiyavad. Upendra Brahmachari. Sibyl Anstria from Germany. Suchitra Devi Rasi. Nicolina Vedder from Germany. Nandini Devidasi. Lara Smeret from Germany. Lavanga Lata Devidasi. Manju Simaha from Bihar. Same name, Manju Devidasi. Prasanta Kumar Ghosh. Same name, Prasanta Prabhu. Okay. Urvila Ghosh. Same name, Rajkumari Mathura, same name, Pralad Singh Mathura, same name, Nimai Garcia Soares, Brazil, Nimai Das, Krishna Priyadasi, daughter of Gokul Prabhu, Australia, and Anupam Didi, same name, Krishna Priyadasi.
Then one more announcement, Amlo. यहाँ 12 दिन थे वृंदावन में और यहाँ रह करके वृंदावन के सब स्थानों का दर्शन किया since 12 days we are here and we are